Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Elhamdülillahi bi nimetihi tetimmü salihat. La havle ve la kuvvete illa billah. तो आइए, बड़ा खूबसूरत पारा, बड़े प्यारे माहौल में सुनते हैं। देखिए, आपके इर्द गिर्द कोई शोर तो नहीं? कोई चीज़ तो आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं कर रही? आपका फोन गलती से खुला तो नहीं रह गया? आपके कंप्यूटर पे कोई और विंडोज तो नहीं खुली हुई? किचन में कुछ रख कर अब आप उसका इंतज़ार तो नहीं कर रही कि अच्छा ज़रा कोई बात नहीं सुन ही रही हूँ, अभी पारा तो शुरू नहीं हुआ। अभी तो ये शुरू की बातें वैसे भी एक्स्ट्रा होती हैं, तो अगर आप हुक्म करें तो मैं बग़ैर इंट्रोडक्शन और इब्तदाई चीज़ों के शुरू करती हूँ। अगर आप में से किसी को भी फील होता है ना कि पारा तो वो होता है जब आयत पढ़ी जाती है तो बिस्मिल्लाह पारा शुरू कर लेते हैं, लेकिन मुझे पता है कि आप ऐसे नहीं हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए हम शुरू करते हैं इस पारे को, और बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसको देखेंगे। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बादु, फाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रब्बि श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अम्री वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु कौली। रब्बि यस्सिर वला तुयस्सिर व तम्मिम बिल खैर। दौरे कुरान 2025, DQ 2025। आज इसमें हम करेंगे जुज़ नंबर 24, फ़मन अज़लमु, पारा नंबर 24। और इस पारे में हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ को महसूस करते हुए बड़े प्यार से पढ़ेंगे दुरूद शरीफ अपनी अपनी जगह। ये कोई रस्म नहीं, ये कोई आदत नहीं, ये आपका मेरा कनेक्शन, ताल्लुक़, राबता अपने प्यारे नबी के साथ जुड़ने के लिए है। तो दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन वाला अली मुहम्मदिन कमा सल्लै ताला इब्राहीम वाला अली इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन वाला अली मुहम्मदिन कमा बारक ताला इब्राहीम वाला अली इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। प्यारे नबी सिराज मुनीर थे, वो हिदायत का चिराग के जिसके इर्द गिर्द बहुत सारी मुखालफतों की हवाएं चलती रहीं, लेकिन चूंकि सच्चाई पे था, हक पे था, रब का साथ था और रब के लिए था, तो अल्लाह ने उसको आज तक कायम रखा है और क़यामत तक इस रोशनी से दुनिया मुनव्वर होती रहेगी। आज के दौर में ज़रूरत इस बात की है कि इस चिराग को लेकर चलने वाले उम्मते मोहम्मदिया के लोग अपनी जिम्मेदारियों को समझें और सिर्फ हर वक्त घर में घरदारी और भाग दौड़ और कमाना और खाना और बच्चों का शोरगुल ही ना हो। ज़रा सा अपने बच्चों को भी साथ लेकर बैठिए, कोई बात नहीं, सब आता है उनको, इंग्लिश भी आती है, उर्दू भी आती है, और कुछ ना भी आए तो उन पर रहमत तो उतरेगी ना। और अल्लाह आपके घरों में रहमतें डाल दे, बरकतें डाल दे। जिन जगहों पे बैठकर आप अल्लाह का ये कलाम सुनते हैं, याद रखिए, अगर इन जगहों पे बैठकर अगर अल्लाह की बात आपके दिल में उतर जाए तो यही जगह आपके लिए गारे हिरा की तरह मुकद्दस हो जाएगी। असल बात यह है कि हमें अपनी जिम्मेदारियों को समझना है। तो आइए देखते हैं कि मोहम्मद अरबी, जिसको अल्लाह ने हिदायत का एक चिराग बनाकर भेजा दुनिया में, वो किन किन मुखालफतों से गुजर गए और फिर अल्लाह ने उनसे जो खैर दिलवाई, आज मैं और आप उसी खैर का हिस्सा। पिछले सेशन में हमने देखा था कि अल्लाह के नबी ने वंजिर अशीरत कल अक्रबीन की आयत पे अमल करते हुए अपने ख़ानदान वालों को दावत दी, लेकिन आपके हमसाए, आपके चचा अबू लहब के दिल में हसद और ग्रज की वजह से आप तो कुछ कह ना सके, लेकिन वो अपनी गलत बात फैला के चला गया। खैर, हक वाले हारते नहीं, वो थकते नहीं। आपने एक बार फिर दावत का इंतज़ाम किया, ख़ानदान वालों को बुलाया। जब सब खा चुके तो इस दफ़ा आपने अपने रब का पैगाम सुनाया, जिसका खुलासा क्या था कि लोगों, अपनों से कोई झूठ कैसे बोलेगा? और अल्लाह की कसम, मैं तो गैरों से झूठ भी ना बोलूं, तुमसे कैसे बोलूं? औरों को धोखा ना दूं तो तुमको कैसे दूं? तो अल्लाह जानता है कि मैं उसका रसूल हूँ, इसने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। सुन लो, अरब में कोई भी अपनी कौम के लिए मुझसे बेहतर चीज़ नहीं लाया। मैं तुम्हारे पास दोनों जहान की भलाई लाया हूँ। आप भी इस वक्त महसूस कीजिए, आप दुनिया जहान की सबसे बड़ी भलाई को इस वक्त सुन रही हैं। क्या आपका इर्द गिर्द इस चीज़ का मुतहम्मिल है? अल्लाह के नबी की ये बात आज मेरे आपके लिए भी है। फिर आपने कहा, रब का हुक्म है कि मैं तुमको उसी की तरफ बुलाऊं, है कोई जो इस काम में मेरा साथ दे और मेरे बाद भी इसे बाकी रखे? फिर आप खामोश हो गए, लोगों के चेहरों को तकने लगे कि किसका दिल ईमान की तरफ माइल हुआ। उस्ताद भी जब क्लास में कोई बात कहता है ना, तो उसके बाद फिर लोगों के चेहरे पड़ता है। कुछ वक्त तो कुरान पढ़ा जाता है, कुछ वक्त किताबें पढ़ी जाती हैं, और ज़्यादा वक्त चेहरों को पढ़ा जाता है। तालिब इल्म उनके चेहरों पे बहुत कुछ लिखा होता है, और तजुर्बाकार उस्ताद इन चीज़ों को पढ़ लेते हैं कि किसके दिल में क्या हो रहा है, किसके सिर्फ कहानी सुन रहे हैं और किसके कहानी नहीं सुन रहे, और किसके दिल के अंदर उतर कर आंसुओं के रास्ते ये बातें बाहर आ रही हैं। और फिर ऐसे ही लोग असल में किसी महफिल की जान होते हैं। आप ये अंदाज़ा लगा रहे थे कि किसका सीना इस्लाम के लिए खुला, किसने हक की हिमायत का फैसला किया, लेकिन किसी तरफ से कोई आवाज़ ना आई। हर एक को जैसे सांप सूंघ गया। कितना अजीब लगता है उस वक़्त कि आप पूछें और कोई जवाब ना दें, आप कुछ कहें और कोई उठे ना, कोई अमल ना करे। बड़े इंसान को तो अपनी बेइज्जती महसूस होती है। और अभी तो अल्लाह के नबी सिर्फ उन लोगों में थे ना कि जिनको सिर्फ ख़ानदान के नाम पर आपने इकट्ठा किया हुआ था। बाद के अदवार में अल्लाह ने दिखा दिया कि आज अगर आपकी किसी बात पे कोई बोल नहीं रहा, तो एक वक्त आएगा कि आपको इतने प्यारे साथी मिलेंगे कि आपके इशारे अबरू को समझेंगे, हत्ता कि हुदैबिया के मुकाम पर पहुँच कर तो वो ये दिखा देंगे कि इतात का अजर इबादत के अजर से भी ज़्यादा है। आज हम इबादतों में खो जाते हैं, नमाज रोज़ा हज तरावी सब करना चाहते हैं, लेकिन बात मानना कुछ मुश्किल लगता है। इल्म के लिए निकलना हमें वक्त का ज़ियाँ लगता है। नहीं, हम कैसे निकलें, हमारे पास तो अभी और बहुत सारे काम हैं। खैर, लोगों ने आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, कोई आपको कुछ समझता, कोई आपको दीवाना समझ रहा है, हैरत से आपका मुंह देख रहे हैं। कुछ लोगों ने नफरत से रुख फेर लिया और वहां से चल दिए। इतने में एक आवाज़ आई, एक जवान बच्चा 12-13 साल का, बदन भी कुछ यूं ही सा, कद भी छोटा सा, दुबला पतला जिस्म था, मगर बहादुर हिम्मत वाला, उठकर बोला, अल्लाह के रसूल, मैं आपका साथ दूंगा, मैं आपकी मदद करूंगा। कितना अजीबोगरीब मंजर था। लड़के की ये बातें सुनकर अक्सर बेकाबू हो गए और खामोश फिजा कहकहों से गूंजने लगी। फिर वो चोट करते हुए बोले, क्यों अबू तालेब, आप भतीजे की पैरवी करोगे या बेटे की, यानी हजरत अली रजी अल्लाह अन्हो जो पहले से ही आपके पास थे, उन्होंने भरी महफिल में आपका मान रख लिया कि मैं आपका साथ दूंगा। और देखिए, जब उन्होंने कहा तो अल्लाह ने उनकी बात मान ली। अब सच्चे दिल से कोई नियत करें कि अल्लाह मेरे घर से कोई काम हो, अल्लाह ज़रूर कराएगा। मेरी गाड़ी किसी काम में आ जाए, ज़रूर आएगी। मेरे सेल से अल्लाह कोई काम ले ले, ज़रूर होगा। मेरे बच्चों से कोई काम ले ले, ज़रूर होगा। आइए दिल की गहराइयों से दुआ करते हैं कि अल्लाह हमारी एक एक नेमत, एक एक बिलोंगिंग तेरे रास्ते में आ जाए और हमें इस दीन का हिस्सा बना ले। अब देखिए, रिजल्ट्स तो अच्छे ना दिखे, महफिल दूसरी भी बर्खास्त हो गई, इन कोशिशों का हासिल कुछ भी नहीं, मगर आप फिर भी मायूस ना हुए, पूरे वलवले से काम करते रहे। याद रखिए, हक के रास्ते में पहले दिन आपको फूलों के हार नहीं मिलेंगे। शुरू में तो बहुत नेगेटिविटी मिलती है, फिर जब कुछ लोग साथ जमा होते हैं तो फिर ताकत मिलती है। आपने एक दिन फिर कोशिश की, सफ़ा की पहाड़ी पर चढ़ गए और दर्द भरी आवाज़ से बोले, कुरैशी भाइयों, कुरैशी भाइयों। लोग चौंक उठे, अरे भाई ये कौन पुकार है, ये किसकी आवाज़ है। फिर कुछ ही देर में सब लोग जमा हो गए और बेताबी से पूछने लगे, क्या बात है भाई, क्या बात है। आपने फरमाया, ज़रा आप लोग ये तो बताएं, अगर मैं ये कहूँ कि इस पहाड़ के दामन से एक फ़ौज निकलना चाहती है, तो क्या आप यकीन करेंगे। लोगों ने कहा, हाँ हाँ ज़रूर, ना मानने की कोई वजह नहीं, हमने तो आपकी ज़ुबान से कभी कोई झूठी बात ही नहीं सुनी। ये देखिए, ये है रेपुटेशन। अल्लाह हमारा भी लोगों के नज़रों में ये मुकाम बना दे। फिर आपने फरमाया, मेरे प्यारे अजीज़ों, मैं तुम्हें एक सख्त अजाब से डराता हूँ जो तुम्हारे सामने है। मैं इसे इसी तरह देख रहा हूँ जैसे इस वक्त पहाड़ के दूसरी तरफ। कुरैशी भाइयों, खुदा की नाराज़गी से बचो और अपने आप को आग से बचाओ। अगर अल्लाह तुमसे नाराज़ हो गया और तुमको इसने आग में झोंकना चाहा, तो मैं नहीं बचा सकूँगा। आग से बचने की तो बस एक ही तदबीर है कि अल्लाह ताला को एक मानो और मेरे रसूल होने का इकरार कर लो। ये सुनना था कि अबू लहब का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया जैसे लाल अंगारा। फौरन वो तन कर खड़ा हुआ और कड़क कर बोला, ना सो तेरा, तूने इसीलिए हमें बुलाया था, नाउज़ु बिल्ला। ये देख कर आप सन्नाटे में आ गए, बड़ी हसरत के साथ चचा की तरफ देखा। काश कुछ देर वो खामोश रहे और आप लोगों में अपनी बात पहुंचा सके। इनको सच्चे दीन की दावत दे सके और इनको रब का पैगाम सुना सके। लेकिन इसको ज़रा सा भी तरस ना आया और इसका अंदाज़ और सख्त हो गया और आपको जली कुठी सुनाता रहा, और आखिर लोग वहाँ से भी चल दिए। लेकिन अब भी इनमें वही बातें थी। कोई कहता, भाई अब्दुल मुत्तलिब का नौजवान तो आसमान से बातें करता है। कोई कहता, वो तो ऐसे की इबादत करने को कहता है जिसको ना हम देख सके ना सुन सके। कोई कहता, जिससे वो बातें करता है ज़रा हमारी भी क्यों नहीं करा देता, यानी जितने मुंह उतनी बातें। इस तरह इस्लाम की आवाज़ उठाए हुए एक ज़माना गुजर गया। प्यारे नबी अपने पैरोकारों को लेकर अपने घर आ जाते या कभी दारुल अरकम में चले जाते, वहाँ इनको कुरान की आयतें सुनाते। जो ना पढ़े लिखे होते इनको कई कई बार सुनाते, यहाँ तक कि वो बातें याद हो जाएं। जो पढ़े लिखे होते वो ज़रा जल्दी समझ आते, फिर आप खुद भी इस बात को दोहराते। घर जाते तो बीवी बच्चों को आयतें याद दिलाते, और इसी तरह जो नए मुसलमान होते उनको भी याद करवाते। और आहिस्ता आहिस्ता इस्लाम फैलता गया और मुसलमान बढ़ते रहे, मगर मुशरिकीन इसे यूं ही हंसी मजाक पर टालते रहे। ये एक संजीदा ख़तरा है, ये बावर करने को वो अभी तैयार ना थे। यानी उन्होंने अल्लाह के नबी की दावत को बहुत संजीदा बात ना समझा। वो तो यही समझ रहे थे कि ये लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे दीवाने हो गए हैं, इसी की रौ में आकर अपना दीन भी छोड़ बैठे हैं। इनको तो जादू हो गया है, ये तो क्रेज़ी हो गए हैं, इनको तो एक धुन सवार हो गई है। देखना, ये साथ कोई नहीं निभने का, सिर्फ 2 दिन की बात है, ये एक बुखार है, उतर जाएगा और इसके बाद ये सब गर्द की तरह उड़ जाएंगे। देखना, चंद दिन के बाद सब ज़िंदगी नॉर्मल होने लगेगी और देर हो के सवेर ये कौमी दीन ही को अपना लेंगे। यानी उनको ये खुशफहमियाँ थी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत थोड़े दिन के बाद दम तोड़ देगी, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि हक एक दफ़ा जब किसी के दिल में आ जाता है तो फिर उसके बाद सिर्फ एक ही रास्ता है और वो आगे का है। इसमें कोई यू टर्न नहीं, इसमें कोई वापसी का रास्ता नहीं है। अल्लाह के नबी बातों की परवाह किए बगैर अपने काम पे लगे रहे। ये भी लिख लें, अपने काम से काम रखिए, अपने मिशन को जारी रखिए, अपना जायज़ा लीजिए, मुहासबा कीजिए, अल्लाह के सामने अपने आप को हर रोज़ पेश कीजिए, कुरान सुन्नत से हिदायत लीजिए और उसके बाद बातों को पीछे डाल दीजिए। इन्हीं दिनों की बात है, एक रोज़ कुछ मुशरिक काबा में थे और मूर्तियों को सजदा कर रहे थे। इत्तफाक से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इधर से गुजर हुआ, आपसे इनकी ये हालत देखी ना गई। इन पर बड़ा तरस आया, दिल में ख्याल आया कि इस काम से किस तरह रोका जाए और इन्हें जिल्लत से कैसे बचाया जाए। नोट कीजिए, गुस्सा नहीं आया, तरस आया। ये है दाइये दीन का फ्यूल, पहले लोगों पर तरस आएगा, आप उनसे मोहब्बत महसूस करेंगे, फिर दावत इल्लाह का काम होगा। खैर, आप वहाँ गए, कहा, अहले कुरैश, तुम पर दादा इब्राहिम के दीन की को बात वाजे है, तुम तो बिल्कुल ही उससे हट गए हो। तुम इन हकीर मूर्तियों को पूजते हो और इन्हें अल्लाह का साथी ठहराते हो। बताओ तो, कभी सोचा तुमने अल्लाह तुमसे कितना नाखुश होगा? अब तो मुशरिकों को ये बात खा गई, गिरां गुजरी, कच बैसियों पे तुल गए। बोले, कोई हम मूर्तियों को थोड़ी पूजते हैं, असल में तो हमें अल्लाह से मोहब्बत है और उसी से करीब होने की तमन्ना। ये बात आप आजकल इन पारों में भी पढ़ रहे हैं, 24-25 सूरह ज़ुमर, आज के बारे में भी ये बात आएगी। नहीं, हम तो इनको बस बीच में एक वसीला बनाते हैं, ये तो कुर्बत का ज़रिया है, ये तो बस वास्ता है बीच में। आपने फरमाया, अगर अल्लाह को चाहते हो तो मेरी बात मानो, अल्लाह भी चाहने लगेगा। ये सुनना था कि वो आग बगोला हो गए, आपस में बोले, इसकी बातें सुनते सुनते तो कलेजा पक गया, आखिर कब तक बर्दाश्त किया जाए। हम चुप रहे और ये बात बढ़ाते ही जा रहे हैं, क्या हो गया इतना कि हमारी अक्लों पे चोटें लगा रहे हैं, हमारे आबाओ अजदाद तक को गुमराह कहने लगे, और देखो देखो ये तो हमारे देवताओं को भी नहीं बख्शता। अच्छा, अब तो हम बिल्कुल गवारा नहीं करेंगे, एकदम नहीं करेंगे। फिर वो सब उठकर चल दिए, मगर आंखें बिल्कुल सुर्ख थीं, सीने खोल रहे थे। और अब जहाँ देखिए, आप ही मौजूए गुफ्तगू थे। कोई सताने के मंसूबे बना रहा था तो कोई डराने और धमकाने में मसरूफ था, यानी नेगेटिव प्रोपेगंडा फैलता ही गया, फैलता ही गया। सारे सरदार जो मुशरिक थे सर जोड़कर बैठे, आपस में मशवरा करने लगे, कहने लगे, मोहम्मद तो देवताओं पे ज्यादती कर रहे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसका क्या इलाज किया जाए? वो हमारे दीन के पीछे पड़ा है, इससे कैसे पीछा छुड़ाया जाए? क्या ये देवताओं की तौहीन करता है, इन देवताओं की जो हमारे माबूद हैं, हमसे पहलों के माबूद हैं? क्या ये हमको बेवकूफ़ समझता है? जो हमें इन मूर्तियों को छोड़ देने की दावत देता है। इन मूर्तियों को, जिनके लिए अरब के कोने कोने से लोग आते हैं, आकर इनको सजदा करते हैं, काबे की तरह इनका तवाफ करते हैं, क्या ये चाहता है कि सारा अरब हम पर हल्ला बोल दे? क्या ये चाहता है कि हर कबीला हमारा बाइकॉट कर दे और हमारे यहाँ आना जाना छोड़ दे, कि हमारी सारी तिजारत ठप पड़ जाए और हम दाने दाने को तरस जाए? नोट कीजिए, इन बातों में आपको दीनदारी दिख रही है या दुकानदारी? लिखिए, अक्सर दीनदारी के नाम पर जो काम होते हैं, अंदर खाते दुकानदारी होती है। खाना काबा भी उनकी तिजारत का एक मरकज़ बन चुका था। बाहर के लोग आते, उनकी तिजारत चलती, उनके खूब कारोबार चलते। वो ये नहीं चाहते थे, यानी पीयर प्रेशर में नहीं आना चाह रहे थे, ताकि फिर कहीं हमारी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ही ना बंद हो जाए। आज कितने मुसलमानों का ये मसला है, गैरों को इसलिए खुश रखो ताकि वो तुम्हें एड देते रहें और तुम उनके सामने अपने सरों को झुकाते रहो। तो ये उस दौर का भी मसला था, ये आज का भी मसला है। खैर, बहुत देर यूं ही बातें होती रहीं। आज के हालात को देखिए तो आपको कोई चीज़ नई नहीं दिखेगी। खैर, एक दिन तय पाया कि कुछ लोग अबू तालिब के पास जाएंगे और इनसे भतीजे की शिकायत करें। क्या आप इनको मना कीजिए कि वो ना हमको कुछ कहे, ना हमारे देवताओं को, ना इसको हमारे दीन से कोई सरोकार है, ना हमको इसके दीन से, यानी बस ठीक है, तुम अपने काम पे रहो, हम अपने पे रहें। कुरैश के सरदार अबू तालिब के पास आए। उनमें हर्ब का बेटा अबू सुफियान भी था, रबिया का बेटा उतबा भी था, मुगीरा का बेटा वलीद, और वाइल का बेटा आस, और हिशाम का बेटा अमर भी था। ये बड़े बड़े नाम थे उस दौर के। हाँ, वही अमर जिसकी कुनियत अबुल हकम थी और आज आप और मैं उसको अबू जहल के नाम से जानते हैं। ये सब वहाँ गए, अबू तालिब के सामने अपनी बात रखी। उन्होंने भी उनकी दिलदारी कर दी, बड़ी नरमी से बातचीत की, किसी तरह समझा बुझा कर वापस कर दिया। इसी तरह दिन गुजरते गए और प्यारे नबी शिर्क और बुत परस्ती से रोकते रहे और तन्हा अल्लाह की इबादत पर भुभारते रहे, यहाँ तक कि मुसलमानों का एक गिरोह तैयार हो गया। थोड़े थे, तन्हा थे, लोग मिलते गए, काफिला बनता गया। अब मुशरिक घबराने लगे कि अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कामयाब हो गया तो इसका तो दीन फैल जाएगा, हर तरफ इस्लाम का बोलबाला हो गया तो फिर क्या बनेगा? तब तो हमारी शामत आ जाएगी, वतन अजीज वीरान हो जाएगा और हमारा सारा कारोबार ठप हो जाएगा। और फिर तो बस हम गए, यानी वही बात है कि अपने फायदों की खातिर वो परेशान थे। वही बातें जो कि हर दौर में रहीं और मौजूद थीं और हैं भी, हर वक्त लोगों को यही रहता है। खैर, कहने लगे, ये कोई इग्नोर करने वाली बात नहीं है, कोई गोलमोल बात नहीं है, अब कोई दो टोक फैसला हो जाए। ये सोचकर वो फिर एक दिन अबू तालिब के पास आ गए और बोले, अबू तालिब, आप हमारे बुजुर्ग हैं, दिलो जान से हमें अजीज हैं, जरा भतीजे के मामले में इंसाफ कीजिए ना। इससे कहिए कि हमारे देवताओं को बुरा ना कहे, हमारे दीन में ऐब ना निकाले, हमारी अक्ल व खिरद पर हमले ना करे, और सबसे ज्यादा जो उनको बुरा लगता था वो क्या था कि हमारे बाप दादा को बुरा ना कहे। हमें ये अच्छा नहीं लगता हमारे बड़ों को बुरा कहा जाए। आप इसको समझा लें या फिर बीच से हट जाइए, हम खुद ही इससे निपट लेंगे। आखिर आप भी तो इसकी बातों से बेजार हैं, आपको भी इस तरह चैन मिल जाएगा। अब अबू तालिब से कुछ बनना पड़ा, मजबूर होकर उन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया। आप आए तो वो बोले, भतीजे, ये कौम के मालदार और सरदार लोग हैं, यानी ये इलीट हैं, ये पैसे वाले हैं, आज की ज़बान में आप कह लीजिए कि ये डोनर हैं, ये सपोर्टर्स हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, लिहाजा ऐसे लोगों को नाराज़ तो हम कर नहीं सकते। तो मेरी तुम्हें एक नसीहत है कि तुम इनके देवताओं को कुछ ना कहो, इन्हें तुमसे कोई शिकायत है ना तुम्हें इनसे, सिर्फ तुम इनके तौर तरीकों को बुरा कहते हो ना, अब ये कहना छोड़ दो, ना तुम इनको कुछ कहो ना ये तुम्हारे खुदा को कुछ कहे। उस वक्त फिर अल्लाह के नबी ने वो तारीख सास बात कही, आपने फरमाया, चचा, जो चीज़ इनके लिए ज़्यादा बेहतर है, क्या इसकी तरफ इन्हें बुलाना छोड़ दूँ? अबू तालिब ने कहा, वो क्या चीज़ है? आपने फरमाया, मैं ये कहता हूँ ये ज़ुबान से सिर्फ एक फिक्रा कह दें, क्या? वकूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहून, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, ये फलाह पा जाएंगे। अगर ये राजी हो जाएं तो पूरा अरब इनका गुलाम हो जाएगा, सारी दुनिया इनके कदम चूमेगी। अबू जाहल जोर से चीखा, तेरे बाप की कसम, वो कौन सा फिक्र है, इस जैसे 10 फिक्रें हमसे सुन ले, क्योंकि उनको सरदारी चाहिए थी, उनके मिजाज में बड़ापन था। और जब आपने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा, ये सुनते ही फिर तिलमिला उठे। गुस्से से चेहरे सुर्ख हो गए, नफरत से गर्दनें फिर गईं और वो ये कहते हुए चल दी, अच्छा देख अब हम तेरे साथ क्या करते हैं, धमकियों पे धमकियां, धमकियों पे धमकियां। आप दीन का काम ऐसे नहीं कर सकते, याद रखिए इसके लिए मुखालफतों के सामने एक सीना सपर दीवार की तरह खड़ा होना पड़ता है। और देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत तेजी से फैल रही थी, मुआशरे का जो साले अंसर था ना, कह लीजिए कि सोसाइटी की जो क्रीम थी, जो इलीट थे, जिनके अंदर अभी फितरत की पुकार पे लब्बाई कहना था, जिनमें खैर थी, वो सब आपके गिर्द जमा हो रहे थे। ये देखकर तो उनको और भी गुस्सा आने लगा कि सारे अच्छे अच्छे समझदार और अबू बकर जैसे जेनरस लोग और खदीजा जैसी दौलतमंद औरत और अली जैसा इतना समझदार बच्चा, ये इनके इर्द गिर्द आ रहे हैं। ये देखकर तो वो शिर्क के झंडे उठाने वालों को और भी गुस्सा आया, तिल मिलाने लगे, इनके दिलों पर सांप लौटने लगे। अल्लाह की इबादत सरासर उनके बुतों की तौहीन थी उनकी नज़र में, और इस्लाम की इज्जत कुफर के लिए जिल्लत थी उनकी नज़र में, और इस्लाम की सरबुलंदी काफिरों के लिए खतरा थी। खैर गुस्से से बेताब हो गए, बिल्कुल आग बगोला हो गए, कस्में खाई, अब हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए नंगी तलवार है, जहाँ पाएंगे इसे सताएंगे और जिस तरह हो सकेगा इसका दिल दुखाएंगे, जिस्म को भी जख्मी करेंगे और रूह को भी छलनी करेंगे, और इसके दीन को मिटा कर छोड़ेंगे। देखिए बुरा हो शैतान का, कैसे लोगों से क्या क्या बातें कहलवाता है, बाज़ अच्छे अच्छे लोगों से बुरी बुरी बातें कहलवाता है। अब इस बात को उन्होंने कह के छोड़ नहीं दिया, प्रोपेगंडे के लिए पूरी तैयारी कर ली, अपने अपने शायरों को जमा किया इसके खिलाफ बोलो, बदमाशों को आपके खिलाफ भड़काया कि जहां ये और इसके साथी जाएं वहां गालियां दो, इन पे तोहमतें लगाओ, अशार पोलो इनकी हज में, लोगों में आपके खिलाफ बदगुमानियां फैलाईं, और आपकी अक्ल और नीयत पर हमले ही करते रह गए। कोई कहता ये जादूगर है, कोई कहता इस पर असर है, कोई कहता इसको शोहरत की हवस है, यानी जो कह सकते थे बुरा भला मेरे प्यारे नबी को कहा। कभी किसी ने आपको कहा हो ना तो आप महसूस करेंगे, हम तो बड़े प्यार से कहते हैं अल्लाह के नबी ने 23 साल दीन को फैलाया, नहीं 23 साल मुखालफतें सही, 23 साल आपने लोगों के ताने सुने, आपकी बातें सुनी, मक्की दौर के ही और खेल हैं, मदनी दौर के कुछ और होंगे। लेकिन याद रखिए रूह पे, अक्ल पे, जिस्म पे हर हमला जो कर सकते थे उन्होंने किया। एक दिन कुछ मुशरिक सरदार कब हमें जमा हुए और आपको मौजूए सोहन बना लिया फिर। अरे मोहम्मद कहता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि हम लोग मर जाएंगे तो फिर जिंदा किए जाएंगे और अपने किए का हिसाब देंगे, अच्छे कामों का अच्छा बदला पाएंगे और बुरे का बुरा, अच्छे करेंगे तो जन्नत में जाएंगे, बुरे काम करेंगे तो जहन्नम में जाएंगे। यानी हैरत हो रही थी उनको आपके इस मौजू पर। यहाँ से देखिए कि उस वक्त अकीदा आखिरत कितना प्लूट हो चुका था उनका। फिर उन्होंने सोचा कि ज़रा मोहम्मद को बुलाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुछ बहस और मुनाजरे करते हैं, अगर वो अपनी बातों में सच्चा होगा तो दलील दे देंगे, और अगर नाउज़ुबिल्लाह झूठे होंगे तो फिर महज दावे हैं, फिर हमें हक है कि इसको जैसा चाहे सताएं, ना फिर उसके बाद कोई हमें रोकेगा ना कुछ, मलामत वाले मलामत करें, बाज़पुरस वाले बाज़पुरस करें, लेकिन हम ज़रा एक दफ़ा इसको खूब छान पटक लें। खैर उन्होंने आपके पास किसी को भेजा, वो आदमी आया, आपको इनकी तरफ से कुछ उम्मीद दी, आपने सोचा शायद इन पर हक बेनकाब हो गया है और शायद अब वो ईमान ले आएंगे, ये सोच कर आप बेताबी से इनकी तरफ बढ़े। ये थे प्यारे नबी, हमारे नबी, अखलाके मोहम्मदी। कभी किसी का रास्ता नहीं बंद किया था क्योंकि कॉम्प्लेक्स कोई नहीं था, कोई छुपी हुई बात नहीं थी, और उम्मीद अच्छी थी, लोगों से बदगुमान नहीं थे, लेकिन वहाँ गए तो वहाँ तो कुछ और ही था, वही दिलखराश बातें थी, वही ज़िद्द और नफ़रत की अदाएँ थी। क्या बात है, एक ही बात इतनों को फायदा दे और किसी को फायदा ना दे, क्योंकि पीछे से फ्रेम होता है ना, आप देखिए कि पानी है ना, जिस सांचे में डालेंगे वैसी क्यूब बन जाएगी, इधर से उधर उसी को फैला देंगे तो पतली सी शीट उसकी जम जाएगी, तो ये जो फ्रेम ऑफ माइंड है ना, ये बहुत खतरनाक होता है। इंशाल्लाह इससे अगली नशिस्त में देखेंगे, थोड़ा सा आप भी तजस्सुस रखिए कि अल्लाह के नबी तो इतनी प्यारी उम्मीदें लेकर गए, लेकिन उन लोगों ने वहां क्या किया। ये हमारे प्यारे नबी का अखलाक था, प्यारे नबी को अल्लाह ताला ने जो अखलाक दिया था, ये ज़रा उसका एक वाक़या सुनते हैं, और ये सारी बातें आपको मुझे अपना मुहासबा करने के लिए सुननी है, ना कि दूसरों का, क्योंकि असल बात भी यही है कि हम प्यारे नबी जैसे आज हो जाएं तो दुश्मन दोस्त बन जाएंगे इंशाल्लाह। आज का मौजू क्या है, मैं जानता हूँ आप बदला नहीं लेंगे। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु अल्लाह के नबी के ख़ादिम ख़ास थे, उन्होंने 10 साल तक आपकी खिदमत की, आपके साथ रहे, कहते हैं कि एक मरतबा एक बद्दू आया और आपकी चादर इतनी ज़ोर से खींची कि आपके मुबारक कंधे पर निशान पड़ गए। बद्दू ने इसी पर इक्तफा नहीं किया बल्कि इंतहाई बदतमीज़ी से कहने लगा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे इन दो ऊँटों पर अल्लाह का दिया हुआ माल लदवा दे। और साथ ही कहने लगा, हाँ सुन ए मोहम्मद, देखिए नबी का नाम ले रहा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये माल ना तेरा है ना तेरे बाप का। ज़रा गौर तो कीजिए, टोन तो देखिए बदबू की, गंवारों की। याद रखिए बात है बानसीब, कुछ कल्चर की बातें होती हैं, कुछ तहजीब की, कुछ कुछ लोगों का बात करने का अंदाज ही दो टोक होता है। ऐसा वो कहते हैं ना कि तीर मारने वाला अंदाज, वो जड अंदाज, कोई सलीका बात करने का नहीं, कोई अखलाक नबी वाली बात नहीं है। ये बिल्कुल ऐसा है, 10 बार सोचिए, 20 बार सोचिए कि अल्लाह के नबी के अखलाक की रफ़त और बुलंदी किस मुकाम पर है। क्या आप इस बद्दू की बात से नाराज़ नहीं हुए बल्कि इसकी इस बेहुदा गुफ्तगू पर खामोश रहे? आप इस कदर बुलंद और आला मुकाम पर फ़ाइज़ थे, क्या आप किसी जाहिल की जहालत का जवाब देना भी मुनासिब नहीं समझते थे? लिख लीजिए, हदीस है, जाहिलों से किनारा करो, उनको जवाब ना दो, क्योंकि वो तो जाहिल हो गया, तुम ना बन जाओ। अल्लाह के नबी ने कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बाद आपने इस बद्दू से मुखातिब होकर फरमाया, सुनो माल तो अल्लाह का दिया हुआ है और मैं इसका बंदा हूँ, लेकिन ये जो तुमने मुझसे बदतमीजी की है इसका बदला तो लिया जा सकता है। अब ज़रा देखिए, पहले इसको कूल डाउन किया, ठंडा हो गया, फिर अपनी बात पेश की। आपको पता है कि इसके जवाब में बद्दू ने क्या कहा? कहने लगा, आपकी बात तो दुरुस्त है मगर मैं जानता हूँ कि आप ऐसा नहीं करेंगे। अल्लाह के रसूल ने उससे पूछा, आखिर क्यों? इस बद्दू ने अल्लाह के नबी के अखलाक की एक आला सिफत बयान करते हुए कहा, इसलिए लियन नकला तुकाफियो बिस सैयत सैया, इसलिए क्या बुराई का जवाब बुराई से नहीं दिया करते। अल्लाह हुक्म, एक बद्दू भी अल्लाह के नबी को जानता था, ये अलग बात है कि वो उनके साथ क्या मामला करते थे। आज हम देखें, अल्लाह के नबी ने इस बद्दू का जवाब सुना तो मुस्कुरा दिए, फिर हुक्म दिया कि इसके एक ऊँट पर जाओ और दूसरे पर खजूरें लाद दी जाएं। ये सही बुखारी की रिवायत है 6088, अबू दाऊद में 4775 और निसाई में 4780। तो ये थे हमारे रसूल, प्यारे रसूल, आपके आला अखलाक की एक झलक कि जिसने बदतमीज़ी और ज़्यादती की इसे दो ऊँटों के बोझ के बराबर जौ और खजूरें अता करके रुख्सत फरमाया। ज़रा हम भी कभी अकेले में बैठकर अपना जायज़ा लें, हम तो ईंट का जवाब पत्थर से देने के मुहावरे बोलने वाले लोग हैं, अल्लाह हमें इस प्यारे नबी के साथ जोड़ दे। तो ये थी चंद बातें जिससे हमारा दिल अल्लाह के नबी की मोहब्बत में चूर चूर हो रहा है, और दिल चाहता है कि उसी नबी के ज़रिए जो प्यारा कलाम अल्लाह ने दिया हम उसको भी देखें। तो आइए ज़रा सा अपने पारे पे पिछले पारे के साथ रब्त है, जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो अल्लाह का मामला था उसको पेश किया गया कि किस तरीके से इख़लास के साथ तड़प के, ला अल्लाह का बाग़ नफ्स कला सारिहिम, तड़प लोगों की खैर ख्वाही के ऊपर आप थे। पिछले पारे में हमने देखा था कि सच्चा ईमान गूंगा नहीं होता, जब दिल में सच्चा ईमान आता है तो फिर इंसान अपने आप को एक जगह खड़ा नहीं करता। आज उसी से आगे बढ़ेंगे, पारा नंबर 24 का मरकज़ी मजमून है इस्तकामत से सिद्दीकियत तक। याद रखिए, पहली आयतों में हम देख लेंगे सिद्क की बात और उसके नाते से अबू बकर सिद्दीक की बात आएगी, और पारे के आलमोस्ट तकरीबन एंड के ऊपर हम इन अल्लज़ीना क़ालू रब्बुना अल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू की बात पढ़ेंगे कि जो लोग अल्लाह के रास्ते में जम जाते हैं तो उनको अल्लाह इस्तकामत देता है। तो जो मुकामे सिद्दीकियत है ना, ये उनको मिलता है जो इस्तकामत के साथ हक के रास्ते पे चलते रहते हैं, चलते रहते हैं। जिनको अल्लाह छोटी सी नेकी का मौका दे तो वो कबूल करके बड़े अच्छे तरीके से करते हैं उसको पूरा, फिर अल्लाह उससे बड़ी नेकी उनके नसीब में कर देता है, फिर वो उसको भी आसन दर्जे पे करते हैं, फिर उसके बाद होते होते जब वो अल्लाह को साबित कर देते हैं कि अल्लाह तुम्हें जो काम देगा, जो जिम्मेदारी हमारे लगेगी, हम उसको अपनी पूरी एफर्ट के साथ करेंगे, तो एक दिन आता है कि अल्लाह ताला फिर उसको सिद्दीकियत का मुकाम देता है। ये सारे मरातबे ईमान है जिनको हम सूरत फातिहा की एक आयत में पूछते हैं अल्लाह से कि सिरात अल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, अल्लाह इनाम वाले लोगों का रास्ता दिखाना, और फिर अल्लाह ताला सूरत निसा में आयत 69 है, उसमें बमयुति अल्लाह व रसूल फौलाई का अनम अल्लाह मिन नबी न व सिद्दीकीन व शुहदा व सालहीन में पेश करता है। तो आप इसको एक मिसाल से समझिए। आप किसी यंग बच्चे को जिन में लाइए जो अभी पढ़ने से फारिग हुआ। अब उसका दिल करता है कि मुझे जॉब मिले। पहले दिन ये ख्वाब देखना कि मैं इस कंपनी का सीए बना दिया जाऊं, या मैं इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन का बड़ा हेड बना दिया जाऊं, ये एक दिन में नहीं होगा। शुरू में उसको बहुत छोटी सी जॉब मिलेगी, फिर एक्सपीरियंस कराया जाएगा, फिर उसकी जॉब बढ़ती जाएगी। जैसे एक मिसाल कभी दिया करते थे हमारे वालिद भी कि अल्लाह तआला का मामला क्या है, कि किसी को 10,000 रुपये देता है कि जाओ इसको इस्तेमाल करो, इसको बांटो। जब बंदा उस 10,000 को इस्तेमाल करता है, ख़ुद भी अपने हक़ भी अदा करता है दूसरों के अल्लाह के, तो अल्लाह उसको 20,000 दे देता है। फिर वो 20 को करता है तो 30, और फिर अल्लाह लाखों में देता है। जब बंदा ज़्यादा करने लग जाता है फिर अल्लाह बेहिसाब देता है। जैसे किसी ब्रांच का मैनेजर, शुरू में छोटी सी ब्रांच में फाइज किया जाता है, फिर वहाँ वो जब अच्छा काम करता है तो उसको शहर के अंदर ज़रा एक मेन जगह पे काम दे दिया जाता है, और एक दिन आता है कि उसको पूरे शहर का सबसे बड़ा हेड बना दिया जाता है। यही है, इस्तकामत से लगे रहिए, अपने हिस्से का काम करते रहिए, एक दिन मुकामे सिद्दीकियत भी मिल जाएगा। याद रखिए कि अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हो से हमें कोई रिवायत नहीं मिलती, चंद गिनती की रिवायतें हैं जो हदीसें अल्लाह के नबी से उन्होंने सुनी और पेश की। हज़रत उमर फारूक से हमें कोई हदीसें नहीं मिलती इल्ला ये के चंद, लेकिन अबू हुरैरा से बहुत सी हदीसें मिली। तो क्या मतलब है, इल्म के मैदान में अबू हुरैरा आगे निकल गए, लेकिन नबी के साथ रहने में, आपको हर हाल में सपोर्ट करने में, आपकी मदद करने में, जहाँ कोई ना हो वहाँ अबू बकर हो, इन चीज़ों ने, और हत्ता के हिजरत के मौके पे आपकी तस्दीक करके अबू बकर को सिद्दीकियत का मुकाम मिल गया। तो आप में से कोई किसी भी दर्जे पे काम कर रहा है उससे कोई मफर नहीं, बात यह है कि आप वो काम कितने शौक से करें, कितने जज्बे से कर रहे हैं। काम किसी कोर्स के शुरू में बड़ी तवज्जो, बड़ी मोहब्बत, और आहिस्ता आहिस्ता आप ढीले हो गए। तो याद रखिए, जब जिम्मेदारान ढीले हो जाते हैं तो वो कोर्स, वो प्रोजेक्ट, वो सब खुलैप हो जाता है। हज़ारों लोग भी आपके हेल्पर्स बन जाएं और आप खुद उस चीज़ को देखना छोड़ दें, ज़रूर क्वालिटी डाउन होगी। इस सारी चीज़ को हम पारे के साथ साथ देखते रहेंगे, क्योंकि इस्तकामत में क़यामत है। हम चाहते हैं नेकी करें रमज़ान में, ना बाकी 11 महीने करोगे तो सिद्दीकियत के मुकाम पे पहुंचोगे। देखिए, खर्च करना और बात है, लेकिन खर्च करते रहना और बात है। सफाई करना एक आम बात है, कोई मेड आई करके चली गई, लेकिन सफाई रखना बहुत बड़ी बात है। तो ये सारी चीज़ें मुस्तकिल कोशिश चाहती हैं, और इसके लिए फिर अल्लाह ताला का एक असूल याद रखिए कि वो दुनिया में इंसानों की जब कोशिशों को देखता है तो फिर आसमानों वालों को उसकी मदद में लगा देता है। अर्शियों का रिश्ता फर्शियों से। दूसरी मेन चीज़ आप इस पारे में देखेंगे, आप हैरान होंगे इस पारे के शुरू, मिडल और आखिर में फरिश्तों का क्या खूबसूरत ताल्लुक़ पेश किया गया इंसानों से। जहाँ आयतें आएंगी वहाँ बात करेंगे। और तीसरी चीज़ इस पूरे पारे के अंदर आप देखेंगे कि कुछ लोगों का ईमान सस्ता ईमान होता है, कुछ का ईमान कीमती ईमान होता है। सस्ता ईमान सालेहीन के दर्जे पे ले लीजिए, कीमती ईमान सिद्दीकियत के दर्जे पे है। जब भी कभी किसी को कुछ ज़रूरत पड़े तो क्या चीज़ बेचता है जिसकी ज़रूरत नहीं होती? घर में फालतू चीज़ें रखी बेच दो, अच्छा ये घड़ी इस्तेमाल नहीं हो रही इसको बेच दो, अच्छा ये एक साइकिल कई दिन से रखा है इसको बेच दो। आखिर में वो चीज़ बेची जाती है जो कीमती भी होती है और ज़रूरत की भी है। सोना चांदी आखिर में बेचा जाएगा, या आपकी अपनी इस्तेमाल की एक ही गाड़ी है उसको एंड पे बेचा जाएगा। बिल्कुल इसी तरह कुछ लोग होते हैं, ज़रा मुश्किल पड़ी, ज़रा कोई ज़रूरत पड़ी, सबसे पहले जाकर ईमान बेच आते हैं। तो कह लीजिए उनका ईमान उनके लिए सस्ता था। और कुछ हैं वो हर चीज़ बेच देंगे लेकिन ईमान नहीं बेचेंगे, ये है सिद्दीकियत के मुकाम पे, इनका ईमान कीमती है। वो हर चीज़ बेचकर हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ की तरह जिस्म पे चंद कपड़ों के साथ मदीना पहुंच कर कहेंगे अल्लाह के नबी सिर्फ़ ये बचा के लाए हूँ। और फिर वो लोग ही खुशखबरियाँ पाते हैं कि कद्र अब हल भई, ए अब्दुर्रहमान तूने नफ़े का सौदा किया, तुझे ये तिजारत फ़ायदा दे, तो अपने ईमान को इस बारे में चेक करने का बहुत मौका मिलेगा। अगली चीज़ जिससे हमें मुकामे सिद्दीकियत और इस्तकामत के मौजू में हेल्प मिलेगी वो है उफविद अमरी इलाल्लाह, तफवीदुल अमर। मर्द मोमिन के बात में जहाँ बात आएगी वो करेंगे। यहाँ बस इतना लिख लीजिए कि जब आपका ईमान बढ़ता है तो आप अपने सारे मामले अपने रब के ज़िम्मे कर देते हैं, ठंडा दूध पी के सो जाएं। अपने रब को कह दें हस्बी अल्लाह वफ्विद अम्री इला अल्लाह, अल्लाह मैंने अपना मामला तेरे सपुर्द किया, अल्लाह मैं कुछ नहीं कर सकती, तू मेरे मामलात को देख ले। और फिर इसमें हम एक और चीज़ देखेंगे, दो किरदार, मर्द मोमिन बमुकाबला अबू बकर सिद्दीक, हज़रत मूसा का दिफा करता दिखेगा आपको एक मर्द मोमिन जिसके नाम पे भी सूरत है, और इधर नबी सल्लम को जब मुखालफतों का सामना करना पड़ा, और मोहम्मद अरबी में हम सुन ही रहे हैं कि कैसे अपने भी खफा मुझसे बेगाने भी नाखुश, तो वहाँ आपका दिफा करते हुए अबू बकर सिद्दीक आपके सामने आ गए। ऐसा भी मौका बना कि दुश्मनों ने जब नबी के ऊपर हमला किया तो आप बीच में आ गए कि मुझे मार लो इनको छोड़ दो, और उन्होंने इतना मारा कि अबू बकर सिद्दीक अधमुए हो गए, बेहोश हो गए, बाल ऐसे खींचे के बाद में उनके बालों को पकड़ा जाए तो पूरी जड़ों समेत उनकी चुटिया हाथ में आती थी, और जब होश आए तो जुबान पे एक ही लफ्ज थे, मोहम्मद कैसे हैं, ये ताल्लुक चाहिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, ये जुबानी बातें करना, रबी अव्वल में मिलाद करा लेना, दुरूद पढ़ लेना, मस्जिदों में जाकर अल्लाह के नबी के नाम पे बड़े बड़े वाज फरमा देना, ये भी आप बात है, लेकिन असल बात है कि अबू बकर और मर्द मोमिन की तरह दीन के दिफा पे क्या हुआ, जब लोग आपके खिलाफ बात करें तो आपने उस वक़्त क्या एक्शन लिया, ये इस बारे में आपको दिखेगा। और इस बारे के अंदर एक चीज़ और ले लीजिए, डोंट फॉलो मी आई एम लॉस्ट, मेरा पीछा ना करो, यानी मुझे नहीं देख के रास्ता ढूंढो, मैं तो खुद ही गुम रहा हूँ। कैसे लोग ज़िंदगी भर इस असूल को नहीं समझ पाते, इसको देखेंगे। और इसके बाद अगर इस पारे की सूरतों और उसकी आयतों के ऊपर एक हल्की सी नज़र डाल लें, सूरत ज़ुमर की आयत से ये पारा शुरू होता है, जिसमें तसरुफ़ बारी ताला यानी 42 आयत में अल्लाह का इख्तियार क्या है कि तुम्हारे सोने और जागने पे भी उसी रब का मामला है, यानी अल्लाह ताला तुम्हें तुम्हारी नींद में सुला देता है और फिर जगा देता है। फिर इसी तरह से बहुत प्यारी आयत आ रही है इस बारे में 53, ला तकनतु मिन रहमतिल्लाह, रहमते खुदाबंदी से मायूस ना हो। फिर इसके बाद इसी सूरत के एंड की बहुत प्यारी आयत है, नफखे सूर का हौलनाक मंजर, पूरे कुरान में जहाँ भी सूर की बात है उसमें सबसे स्ट्रॉन्ग आयतें सूरत ज़ुमर का आखिरी रुकू, वनुफिखा फिस सूर। फिर इसके बाद आगे पता चलता है जन्नत मेहमान खाना है और जहन्नम कैद खाना है। इसके बाद सूरत मोमिन शुरू होती है जिसमें मर्द मोमिन का जिक्र है, फिरौन के दरबार में जाकर जिसने मूसा अलैहिस्सलाम की हिमायत की थी, और यहाँ से अब नोट कीजिएगा 7 सूरतें जिनके शुरू में हा मीम आता है, उनमें से पहली सूरत मोमिन है। इन सारी सूरतों के मजमूए को हवामीम और आले हामीम कहते हैं, मोमिन हामीम सजदा शूरा, जुखरुफ दुखान जासिया और अहकाफ, यही आज और कल के हमारे सबक में आएंगी इंशाल्लाह। और ये बड़ी अजमत वाली सूरतें हैं, इन सूरतों के शुरू में अल्लाह ताला की सिफात का बयान है। आप देखिए कि सूरत मोमिन के शुरू में अल्लाह ताला की बख्शने वाली सिफात, गाफिर ज़म्बी काबिल तौबी शदीद अलिक़ाब ज़िद तौल, बहुत प्यारी सिफात दिखती हैं। फिर इसी तरह आयत 10 से पता चलता है कि एक वक्त आएगा काफिर अपने आप से नफरत करेंगे। फिर आयत 11 से पता चलता है कि दुनिया में वापस आने का सवाल करेंगे। फिर आयत 23 से हज़रत मूसा का किस्सा शुरू होता है, जिसमें आयत 28 पे रजुलन मोमिन की तकरीर सुनेंगे हम इंशाल्लाह, और आयत 51 में अम्बिया और मोमिनीन से नुसरत खुदाबंदी का वादा पूरा होता दिखेगा कि इन्ना लनंसुरु रुसुलना वल्लज़ीना आमनू, और उसके बाद फिर असमत खातमुल अम्बिया आयत 55 में है, और आगे उसके सूरत के एंड की तरफ जाएं तो अल्लाह ताला के इनामात हैं, अल्लाह के नबी मुख्तार कुल नहीं थे, उनको इल्मे गैब नहीं था बल्कि ये अल्लाह के पास है, और फिर आखिरी पैगाम इस सूरत का क्या है, वही के मुकाबले में अपने इल्म पर नाज करना, खुद को धोखा देना। आगे सूरत हामीम सजदा है, वो भी हामीम से शुरू होती है, शुरू में कुफारे मक्का की तरफ से पेशकशें हैं जो कि अब मायूस होकर आपकी तरफ ला रहे हैं कि चलो ये कर लो तो वो कर लो, फिर आगे मुशरिकीन की जिद है, कुफार को तंबीह है, फिर आयत 19 से ऑनवर्ड जिस्म के अज़ा का गवाही देना है, और फिर वो खूबसूरत आयत जिस पे पूरा पारा घूमता है आयत 30, इन्न लजीना कालू रब्बुना अल्लाहु सुम्मा इस्तकामू, इसमें हम फरिश्तों की माइयत का तस्करा देखेंगे, और फिर आखिर में हिफाजत कुरान, कुरान قرآن کی فصاحت اور بلاغت پہ یہ پارہ پورا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے شروع کرتے ہیں کہ اس کا حق ادا کر لیں، اور یقین کیجئے کہ ہر پارے کے بعد میں تو ہاتھ کھڑا کر کے کہہ دیتی ہوں کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، اور یہ کبھی ہوگا بھی نہیں، مجھے اس پہ کوئی افسوس بھی نہیں، اس لیے کہ ہماری سب کی ایک لمیٹیشن ہے، خلق الانسان ضعیفا۔